Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
आत्मा हूँ जैसे बाबा ने पहले लिखना शुरू किया, यशोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। और फिर वो हमारा है, जैसे है ना, वो कहो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। तो इसी प्रकार से जब आत्मा हूँ हमारा अभ्यास होगा, जिसको ही योग की स्थिति कहा जाता है, उस योग की स्थिति से ही अनुभव होगा। आत्मा परम धाम से आई है, ब्रह्म लोक के रहने वाली थी, यह शिव बाबा का ये स्वरूप है। इस बताने का फायदा क्या है, क्या प्रयोजन है, इसका लक्ष्य क्या है? ताकि हम अपने मन को कहाँ एकाग्र करें। हम जिसको परमात्मा के साथ योग लगाना है, परमात्मा का ही परिचय नहीं होगा तो योग कैसे लगाएगा? तो परमात्मा का परिचय क्यों दिया गया? योग लगाने के लिए, ताकि जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, परम धाम या ब्रह्म लोक के रहने वाले हैं, उनके गुण क्या है, उनका हमारे साथ संबंध क्या है, ये उसका ज्ञान नॉलेज एस्पेक्ट है। ये जो पहलू है इसको हम ज्ञान कहते हैं। और योग में हम क्या करते हैं, उसकी स्मृति और स्थिति उन्हें सीखते हैं। स्मृति द्वारा स्थिति में प्राप्त, स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो तभी जब हम उसको प्राप्त करते हैं, देह से न्यारे होते हैं, स्वयं को वहां अनुभव करते हैं, उस कर्मातीत स्टेज का, उस शांति की स्टेज का, पवित्रता की स्टेज का, जो बाप समान की स्टेज है, उस स्थिति का जब हम अनुभव करते हैं, वही योग है। वरना ज्ञान पर्पजलेस हो गया, वो तो एक सिर्फ वो जिसको इंटेलेक्चुअल जर्नी कहते हैं, एक चर्चा मात्र रह गई। उस चर्चा का हेतु क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ, प्रयोजन क्या होता? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट स्टडी किया जाता है, कोई भी किताब आप ले किसी विषय पर, तो उसका ये होता है एम ऑफ स्टडी, ये विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है। जब तक वो ना मालूम हो तो उस विषय को पढ़ के क्या करेंगे, वो तो सिर्फ ऊपरी ज्ञान रह जाएगा। इसलिए जो हम ज्ञान सीखते हैं वो सीखते ही योग के लिए, एक उसका जो फोर मोस्ट एम है, अगर फाइनल एम ये नहीं है तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम जो उसका है, वो ये है कि हम उसको रियलाइज करें, उसका अनुभव करें, उस स्थिति को प्राप्त। तो योग जरूरी है, सिर्फ ज्ञान सुन लिया, योग किया नहीं। बुढ़ने के टाइम पर दादी जी के आने से पहले हम पहुंच जाते हैं, योग हम अभ्यास नहीं करते। या जैसे दादी जी ने अप्रिशिएट किया कि 3 बजे आए थे, 2:30 बजे उठे थे, याद की यात्रा की, तो दादी जी ने क्या कहा, ये बहुत अच्छा, इसको मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है, ये धारण। बाबा का कहना तो ऐसा है कि ज्ञान तलवार है, योग ढाल है। क्योंकि योग हमें माया के वार से बचाता है और ज्ञान हमें माया से युद्ध करना सिखाता है। ज्ञान हमारे हाथ में शस्त्र है जिसके द्वारा माया से युद्ध करते हैं। लेकिन ज्ञान के साथ उसका क्या कनेक्शन है? ये तो योग के लाभ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, हर कोई इस बात को समझता है, ये ठीक बात है। अगर हमने सिर्फ ज्ञान पर ही जोर दिया, योग का अभ्यास नहीं किया, तो ज्ञान से विकर्म तो दग्ध होंगे नहीं, विकर्म तो योग से दग्ध होंगे। ज्ञान से हमारी बुद्धि क्लियर हो जाएगी, हमें लक्ष्य का परिचय हो जाएगा, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये हमने जान लिया। ज्ञान तो एक जानकारी है, लेकिन अगर उस जानकारी का साथ साथ हम जो योग, मैंने बताया कि ज्ञान योग के लिए है, योग नहीं लगाएंगे तो विकर्म दग्ध होंगे नहीं। ज्ञान से तो विकर्म दग्ध बाबा ने कहा नहीं के होते, बल्कि योग की भी जो मोस्ट पावरफुल स्टेज है, जो अग्नि योग की प्रगति हम करते हैं, विकर्म तो उससे दग्ध होते हैं। जो भोजन हम स्थूल रूप से या लिक्विड में या सॉलिड में हम लेते हैं, अल्टीमेटली जब वो हजम होता है, उसका रक्त बन के हमारे रक्त में, हमारे खून में उसको शामिल होना पड़ता है, तभी वो शक्ति का रूप धारण करता है, जब वो उसका रूप धारण कर लेता है। उसका अगर वो जो रूप, जिस रूप में हमने भोजन लिया, ग्रहण किया, वो रूप उसका परिवर्तित होके जब रक्त में ना मिल जाए, ब्लड में ना मिल जाए, तब तक वो हमारे शरीर के हर एक भाग को जाकर शक्ति नहीं देता, उससे जो भोजन का फायदा है वो हमें नहीं मिलता। इसी तरीके से योग में जब हम रहते हैं तो ज्ञान उस रक्त का रूप ले लेता है, क्योंकि वो अनुभव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो मोटे मोटे रूप में नहीं रहता। पहले जब हमने ज्ञान सुना तो स्थूल बातें सुन ली हमने, आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का ये स्वरूप है, रामा का सारा आत्मदान का ज्ञान हमने ले लिया। लेकिन योग में जब हम स्थित होते हैं तो उस ज्ञान का जो रस है, जो उसका सार है, वो उसका रूप बन जाता है और वो हमने शक्ति को बढ़ाता है, हमने वो अनुभूति के रूप में हो जाता है, उसी को हम कहेंगे कि वो हमारे हजम हो जाता है। और बाबा कहते हैं कि जब तक देह अभिमान की स्थिति में रहोगे ये ज्ञान धारण नहीं होगा। बल्कि बाबा तो ये भी कहते हैं कि जब आप क्लास में बैठ के मुरली सुनते हैं तो आपको ये भी याद रहना चाहिए कि शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। जैसे संसार में लोग समझते हैं कि फला नाम का गुरु सुना रहा है, लेकिन हमारा जो सदगुरु है, जो टीचर है, वो तो एक शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है वो है, निराकार परमपिता परमात्मा, जो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमें ये ज्ञान सुनाता है। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमारी बुद्धि अगर वहां रहती है कि शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, तो नेचुरली हम भी सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सुप्रीम सोल कॉन्शियस होने के साथ साथ, तो फिर वो ज्ञान पूरी रूप से धारण होता है। तो योग जो है वो ज्ञान की धारणा के लिए भी जरूरी है, योग विकर्म दर्ज करने के लिए भी जरूरी है। योग अगर नहीं होगा तो ज्ञान जो का जो अनुभव है, सार है, वो हमारे जीवन में धारण नहीं होगा। इसलिए दोनों पक्षों का बैलेंस करने के लिए जहां हम ज्ञान सुनते हैं वहां योग का विषय भी उतना महत्वपूर्ण है, वो हमें सुनना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हमें ड्रामा का ज्ञान दिया गया कि ये सारा जो कल्प की कहानी है, मनुष्य सृष्टि का जो इतिहास है, सतयुग के आज से लेकर कलयुग के अंत तक, ये क्या है? ये ज्ञान दिया गया हमें, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आत्मा चार स्टेजेस में से कैसे पार होती है बताया गया ना, ये ज्ञान है। साथ साथ ये बताया गया कर्म की गति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, ये हमें बताया गया। अब ये ज्ञान हो गया, अब इस ज्ञान को धारण करेंगे तभी तो हम सहनशील बनेंगे, फिर ड्रामा के पट्टे पर हम खड़े होंगे। ड्रामा को अगर समझा है हमने तो उसका धारणा का हिस्सा ये है, ज्ञान को धारणा के साथ अगर हम कनेक्ट नहीं करेंगे और ये जो ड्रामा का राज हमने समझा कैसे रिपीट होता है उसको धारणा में हम नहीं लेंगे, ये भूल अगर हम करेंगे तो कल कल रिपीट होगी। अगर हमें ये धारणा में आ जाएगा तो हम उस भूल को फौरन स्टॉप कर देंगे कि ओहो ये तो इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा, खराब इतना इसका परिणाम होगा जो कल कल रिपीट होगा, ब्रेक लगा देंगे ना। कोई भी संकल्प आता है कि ये तो हमारा एक नेगेटिव कर्म बन जाएगा। इसी तरीके से कर्म की गति जब हमने जानी कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका वैसा फल हमें मिलता है, तो इसका भाव क्या हुआ? अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जब हम ये याद करते हैं कि हमारे ही किए हुए किसी कर्म का फल है, और फिर हम ये समझते हैं कि ड्रामा का अंत होने से अब ये आखिरी विदाई दे रहे हैं, आखिरी सलाम कर रहे हैं, हमारा कर्म का हिसाब किताब चुपका हो रहा है, ये चुपका होने का टाइम है, तो हमें खुशी होती है कि हमारा बोझ हल्का हुआ, हमारा कर्ज चुका। तो ये जो हमने ज्ञान दिया कर्मों की गति का और ड्रामा का, ये इन दिव्य गुणों को धारण करने के लिए लिया ताकि हम निश्चिंत बने, दुखी ना हो, अशांत ना हो, क्या भी परिस्थिति आए अपनी स्वस्थ स्थिति को बनाए रखें। और अगर ये धारणा नहीं करते तो फिर उस ज्ञान का प्रयोजन क्या हुआ, समझे ना आपने। तो जब भी कोई ज्ञान की पॉइंट हम सुनते हैं, हम ये जानने की कोशिश करें कि उसका इसके साथ धारणा के साथ क्या संबंध है। अगर उसका धारणा के साथ संबंध हमने नहीं सुना समझा तो ज्ञान अधूरा रहेगा, वो बैलेंस नहीं हुआ पूरी तरह से, और वो ज्ञान का लाभ हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि ज्ञान हमने सुना, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और उस स्थिति में हम नहीं रहे, योग नहीं लगाया, तो उस ज्ञान का फल नहीं मिला, वो ब्लिस नहीं मिलेगा, वो ज्ञान जो है वो आनंद वर्धक नहीं होगा। इसी प्रकार से ड्रामा का ज्ञान आपने ले लिया, कर्मों की गति का ज्ञान तो ले लिया, कर्म कर्म विकर्म क्या है, लेकिन विकर्म कर दिया, या कोई अगर कर्मों का फल दुख के रूप में पुराने किसी कर्म का फल आया और ये नहीं समझा कि मेरे ही कर्मों का फल है, ये चुपता हो रहा है, तो अशांति हो जाएगी, दुख हो जाएगा, ब्लिस तो नहीं होगा। ये ज्ञान से ब्लिस तभी आएगा जब धारणा भी साथ होगी, जब योग भी साथ होगा, जब इनका बैलेंस होगा। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में रहेगा, धारणा का रूप वो धारण नहीं करेगा, योग का रूप वो नहीं लेगा, तो फिर वो ब्लिस नहीं होगी। स्पष्ट हुई है बात सबको कि नहीं? ऐसी कोई मिसाल दीजिए कि धारणा और ज्ञान का क्या संबंध है, और बिना धारणा के ज्ञान कैसे अधूरा है, और बिना धारणा के ज्ञान कैसे ब्लिस हमें नहीं देगा। जब हमें ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ और सभी ये शरीरधारी जो है ये सब आत्मा है, उस तो दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो परिस्थितियां हैं, जो मन मुटाव है, या अनादर की भावना है, या घृणा भावना है, ये नहीं पैदा होगी। और तभी वो ज्ञान जब धारणा में आएगा तो हमारे लिए आनंद देने वाला होगा। अगर वो धारणा में नहीं आएगा तो फिर वो देह अभिमान की स्थिति में, तो जैसे संसार में लड़ाई झगड़ा और ये द्वेष पैदा होता है, जैसे वो बच्चे गाते हैं ना, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, आपस में ना लड़ो लड़ाई क्या है, वो करो पढ़ो पढ़ाई कुछ इस तरह से है, तो वो स्थिति हमारी हो जाएगी अगर हम अपने आप को आत्मा आत्मा समझेंगे। और अगर प्रैक्टिकल धारणा उसकी नहीं करेंगे तो जो संघर्ष वाली स्थिति है वो उसी तरह की स्थिति होगी। तो धारणा का ये हमें फायदा होगा। अब एक और मिसाल लीजिए, जैसे हमें ये बताया गया कि आत्मा जो है मन बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की शक्तियां हैं, योग्यता है, ये आत्मा से कोई अलग नहीं। और इसका धारणा से क्या संबंध है? ज्ञान तो हमने समझ लिया, कोई हमको समझाता है, बात करता है, जिज्ञासु आता है, तो हम उसको कहते हैं आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार, या और भी उसमें ऐड कर दीजिए, लेकिन एक सूक्ष्म रूप, ये हम उसको समझाते हैं। अब धारण हमने किया नहीं, इसको क्या धारण करें हम, और उस धारण करने से ब्लिस कैसे मिलेगा, और उसको ना धारण करने से हम ब्लिस से वंचित कैसे रहेंगे? इसकी मिसाल दीजिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि मन बुद्धि और संस्कार ये आत्मा से अलग नहीं है, ये कोई प्रकृति के नहीं है जैसे लोग कहते हैं, ये आत्मा ही की योग्यता है।
तो लोग कहते हैं कि मन को वश करना बहुत कठिन है, माइंड कंट्रोल इज इम्पॉसिबल, और हम कहते हैं कि सहज है, और वो जब हम ये बात समझ लेते हैं तो पावन बनना शुरू कर देते हैं, विषय विकारों को हम जीतना, उनको निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से संस्कार है, कोई भी आदमी होगा ऊंचा ऊंचा बोलेगा, झगड़ा करेगा, उसे कहो, कहेगा जी जब बात खत्म हो जाएगी, कहेगा बुरा नहीं मनाना, मेरी आदत ही ऐसी है, वो समझता है बस आदत कह के छूट जाऊंगा, मेरा आवाज ऐसा है, मेरे बोलने की आदत ऐसी है, मेरा तरीका ऐसा है, तो आदत ऐसी है तो उस आदत को बदले, इस चीज को वो नहीं समझते। तो हम जब समझते हैं कि ये संस्कार हमारे हैं और ये अभ्यास से बनते हैं, जो कर्म बार बार रिपीट किया जाता है वो संस्कार बन जाता है, अपना प्रभाव छोड़ जाता है, अब हम बार बार उसका जो पवित्र कर्म है करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसको, तो फिर हमारा अच्छा संस्कार बन जाएगा। और अगर हम यही कह के टाल देंगे कि हमारी तो आदत ऐसी है, हमारा नेचर ऐसा है, हमारा स्वभाव ऐसा है, तो फिर वो उसका पुरुषार्थ कब शुरू होगा, उस नेचर को बदलेंगे कैसे? उस नेचर को आज बदलना शुरू करेंगे तो अभ्यास करते करते वो वीक हो जाएगा, और एक दिन वो संस्कार हमारा छूट जाएगा, फिर योग से भी हम मदद करेंगे तो वो संस्कार मिट जाएगा, फिर हमारा नया जो दैवी संस्कार है, जो हमारा गुणात्मक संस्कार है, वो बन जाएगा। तो हमने ही वो गुण धारण करने हैं, आत्मा ये पहले गुणवान थी, इसमें दिव्य गुण थे, अब उनका प्राय लोप हो गया है, ये बात जब हम नहीं समझते तो हमारी धारणा में नहीं आती। तो ज्ञान धारणा में लाने के लिए है, ये जो हमने समझा कि मन बुद्धि संस्कार अलग नहीं है, ये हमारे ही योग्यता है, तो हमने अपनी उन योग्यताओं को ठीक प्रयोग करना है, ठीक तरह से इस्तेमाल करना है, जो पहले हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये धारणा आ गई, हमने संस्कार चेंज करने शुरू कर दिए, मन को प्रभु में, शिव बाबा में लगाना शुरू कर दिया, बुद्धि में ज्ञान धारण शरण करना शुरू कर दिया, आत्मा को पावन बनाने में हम लग गए, तो ब्लिस मिलेगा, आनंद मिलेगा। और अगर हम यही कहते रहे, हे प्रभु मैं तो दास हूँ, नीच हूँ, मेरा मन तो काबू आता नहीं, आप ही किसी तरह से मेरी मुट्ठी में इसको काबू करके डाल दीजिए, तो वो कभी भी नहीं होगा, चाहे कितनी उम्र भी कोशिश करते रहिए। जो वो तेल निकालने की मशीन होती है ना, गाणी जिसको कहते हैं, उसमें जाकर रेत डाल दो, वो कोलू का बैल लगा रहे जन्म जन्मांतर, उसमें से तेल निकलना नहीं, क्योंकि रेत में तो तेल है नहीं, तेल तो तिलों में से निकलेगा। तो जब तक ये ठीक पुरुषार्थ ना किया जाएगा, जिसमें जो चीज होगी उसके वो चीज नहीं ली जाएगी, तो ये जो ज्ञान है इससे तो तिलों का तेल निकलेगा, और वो जो दूसरा ज्ञान दिया गया है वो है ही जिसको बाबा कहते हैं घास लेटी ज्ञान, या वो है ही एक रेत, एक प्रकार से मिट्टी, धूल और छाई जिसको बाबा कहते हैं, तो उससे तेल निकलेगा क्या? कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं, वो तो सिर्फ एक शाली पुलाव है। तो ये सारी बातें धारणा की हैं। ज्ञान जो हमें सिखाया जाता है वो या तो योग लगाने के लिए, या वो बुद्धि को क्लियर करने के लिए, या वो धारण करने के लिए। अगर आपने ज्ञान ले लिया, धारण किया नहीं, ज्ञान ले लिया योग लगाया नहीं, ज्ञान ले लिया उसमें निश्चय करके स्थित हुए नहीं, ब्लिस नहीं मिलेगा, वो बैलेंस नहीं होगा, वो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान एक बुद्धि पर बोझ बन के रह जाएगा। कई जैसे वो कहते हैं ना, गधे पर किताबें लाद दो, शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद सब लाद दो, तो गधा कोई गाय थोड़ी बन जाएगा, गधा तो गधा ही रहेगा, वो उसके ऊपर तो और ही बोझ हो गया, वो शास्त्रों का क्या लाभ होगा उसको? ऐसे ही वो सारा ज्ञान हमारे सिर में और ही गर्मी पैदा करेगा, अगर उसको हमने हजम नहीं किया, धारणा में, योग में, जीवन बनाया नहीं। और फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान भक्तों को दो, अगर वो ज्ञान हम सेवा में नहीं लाएंगे, ये जो हमारा ज्ञान है ये सिर्फ हमारे परिवर्तन के लिए नहीं, ज्ञान का सेवा के साथ भी संबंध है। वो कहते हैं ये ज्ञान देने से बढ़ेगा, ये ऐसा धन है, देने से खुटेगा नहीं, कम नहीं होगा, देने से बढ़ेगा। जब आप किसी की सेवा करेंगे तो आपको नए नए पॉइंट टच होंगे, बाबा आपकी मदद करेगा। और ये ज्ञान सिर्फ स्व परिवर्तन के लिए नहीं है, विश्व परिवर्तन के लिए है। बाबा ने केवल इसलिए नहीं दिया कि आप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर लीजिए, ये तो कंजूस का लक्षण है, जो पैसा अपने बगल में बांध के रख ले, किसी का दान ना करे। बाबा तो कहते हैं कि आप महादानी हो, वरदानी हो, इसका दान करो ज्ञान का, इससे ही आपकी प्रजा बनेगी, भविष्य का राज आपका इसी सेवा पर निश्चित है। तो ये ज्ञान, इसका सेवा से भी संबंध है। अगर आप इस ज्ञान को धारण कर लें, आपको बिल्कुल ब्लिस नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। आज आपके जो ज्ञान है, आप एक महीना सेवा ना करो, आप देखो ज्ञान सड़ जाएगा, उसमें नवीनता ही नहीं आएगी। जिसको बाबा कहते हैं वो खड़ा हुआ तालाब हो जाएगा, वो बहने वाली नदी नहीं होगी, वो पतित पावनी नदी नहीं होगी, दूसरों को नहीं करेगी वो स्वच्छ, क्योंकि वो खड़ा हो जाएगा, उसमें वो काई आना शुरू हो जाएगी, वो ज्ञान आपका फलीभूत नहीं होगा। तो ये जितना दान करोगे, जैसे एक जोत से दूसरी जोत जगती है, ऐसे ही जब इसको आप दान करोगे वो बढ़ेगा। बाबा सोचेगा कि ये औरों को देता है, इस बच्चे को मैं और दूं। आपको सुनाते सुनाते पॉइंट टच होंगे, और फिर जो लोग आपसे प्रश्न करेंगे, जब आप उनको सुनाएंगे, उन प्रश्नों को जरूर आपको भी उत्तर देना पड़ेगा, तो बुद्धि चलेगी। नेक्स्ट टाइम अगर उस टाइम नहीं समझ में आता, तो फिर किसी से पूछोगे, सोचोगे, विचारोगे कि ये प्रश्न इसका था तो ठीक, मैंने जवाब इसको अनुकूल तो नहीं दिया, जैसा इसका जबरदस्त फोर्सफुल प्रश्न था वैसा मैंने पावरफुल इसको उत्तर नहीं दिया, इसके लिए और पॉइंट कोई होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ज्ञान में वृद्धि होगी। जो प्रश्न है वो ज्ञान को खींचने वाले, समझो जैसे दूध गाय को दोहा जाता है, तो प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञान को दोहने वाले, ज्ञान निकलता है उनसे। आप किसी से पूछते हो, किसी की बुद्धि में ज्ञान हो, जैसे आप पानी तो है टूटी में, टूटी आपने खोली तो पानी आने लग जाता है, तो उससे बाल्टी भर के आदमी काम ले लेता है। इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो ज्ञान का आह्वान करते हैं, ज्ञान उनसे आता है, निकलता है। तो जब आप किसी को समझाएंगे तो आपके मुख से रतन निकलेंगे, और अभी तक जो मुख से हमारे पत्थर और कंकर निकलते आए, हमारी बुद्धि में भी वो परिवर्तन नहीं आया, ज्ञान ने उछल नहीं की, मंथन नहीं हुआ, वो कैसे होगा? सेवा से। तो ज्ञान का सेवा से भी कनेक्शन हुआ। अगर सिर्फ ज्ञान पर जोर दोगे, ज्ञान का सब्जेक्ट आपका प्रधान होगा, मुरली सुन के घर चले जाओगे, पॉइंट नोट करके रख दोगे, उसको योग में अभ्यास नहीं करोगे, उसको धारणा में नहीं लाओगे, उससे उसके द्वारा सेवा नहीं करोगे उस धन से, तो वो ज्ञान से ब्लिस नहीं होगा। और इन चारों सब्जेक्ट्स का वो करोगे, आज जो मुरली सुनी उसको योग से क्या कनेक्शन है, उसका धारणा से क्या कनेक्शन है, उसमें सेवा के कौन से पॉइंट्स हैं, उन चारों को अगर इस्तेमाल में लाओगे दिन भर में और अपने जीवन में, तो फिर आप देखेंगे आपको ब्लिस मिलेगी। ये कहने का भाव है।